संसार का नित्याशुभ तर लेश्या, परिणाम देह वेदना विक्रिया, इन सारे सूत्रों का क्या करोगे? अगर ज्यादा गुणस्थान के स्वरूप में खींचाता नहीं करोगे तो आचार्य कुंदकुन स्वामी ने कहां पर किस प्रसंग में किस दृष्टि से कौन सी बात कही है उसको समझना जरूरी है। और गोमटसार में क्या कहा? गोमटसार में चारों गतियों में ये जो स्वरूप है ये खंडित नहीं हो सकता, ये सिद्धांत सूत्र है। गोमटसार में जो बात आई ना कि चार गुणस्थान तक चारित्र होता नहीं है, सिद्धांत सूत्र हो गया। और कहीं मनुष्य पर्याय में चौथे गुणस्थान में अगर आठ अंगों का कोई जीव पालन कर लेता है तो ठीक है, सम्यक्ताचरण हो गया। लेकिन सम्यक्ताचरण किस गुण की पर्याय है, सम्यक्त की या चारित्र की? ये विचारने की बात है। चारित्र गुण की कितनी पर्याय होती है, ये सारी बातें अगर आप विचार करो, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों में बहुत शीघ्र अपने को समाधान मिल जाता है। एक गुण की एक साथ कितनी पर्याय हो सकती है बताओ। चारित्र गुण है, आत्मा का गुण है निश्चित है, निस्संदेह कोई दो मत नहीं। चारित्र गुण में एक साथ कितनी पर्याय निकल सकती है? अगर ये कहो कि सम्यक्ताचरण चारित्र उसकी पर्याय चौथे गुण स्थान में होती है, और वहां आचार्य कह रहे हैं इसी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आता है वो लेख कि सर्वघाती कषाय के उदय से होने वाली चारित्र गुण की पर्याय का नाम है असंयम, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि सम्यक्ताचरण इज इक्वल टू असंयम, क्योंकि पर्याय तो एक है, एक गुण की एक काल में एक पर्याय होगी, तो एक पर्याय होगी तो सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि वो असंयत नाम की पर्याय है। और कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि सब सम्यक्ताचरण है, तो अगर ऐसा मानो कि चारित्र गुण की पर्याय है सम्यक्ताचरण, तो फिर वो और ये एक हो गए। और कुछ लोग स्वरूपाचरण भी कहते हैं उसको, स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण के बारे में भी काफी चर्चा है। ये सारे विषय जो हैं थोड़े से समझने के विषय हैं आपस में बैठ करके, ऐसा नहीं कि भाई हम इनकी बात मानेंगे उनकी नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर कोई असंयम में भी आगम के अनुकूल बात करता है तो वो बात त्याज्य नहीं है, क्योंकि आगम में वो बात आती है। और अगर कोई पिच्छीधारी के मुख से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो आगम से स्खलित हो रही हो, तो फिर जब तक अनजाने में आप स्वीकार कर रहे हो तब तक आपका अहित नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि शास्त्र में ये बात अलग है, तो फिर शास्त्र को स्वीकार कर लेना। यही बात गोमटसार, जीवकांड, लब्धिसार आदि कई ग्रंथों में आती, कसाय पाहुड़ तक में ये बात लिखी है। बात यह है कि अनजाने में गुरु के मुख से निकली हुई गलत बात को स्वीकार करने पर मिथ्यात्व का दोष नहीं आता, अनजाने में। और अगर जान लिया कि जिनवाणी में कुछ और है और महाराज श्री के मुख से कुछ और बात आ गई थी, छद्मस्थ महाराज श्री से भी त्रुटि हो सकती है, महाराज भगवान नहीं है, और जो भगवान नहीं है उसमें गलतियां तो संभव है, इसलिए उनके प्रति कोई दुर्भावना अपने हृदय में नहीं लाना है। गुरु गुरु है, उनके प्रति वही आदर रहेगा, लेकिन उनके मुख से जो स्खलन हो गया प्रणाम के बदले प्रमाण शब्द आ गया, मान लो कभी बोलने में परिमाण के बदले परिणाम शब्द आ गया, ऐसे कुछ जो मतलब कहीं एकाध अक्षर का कभी स्खलन हो जाता है, अर्थ बदल जाते हैं उसमें, पर मान लो ऐसी कोई त्रुटि हो रही है किसी से, तो फिर वो अपूज्य तो नहीं है, अनादर के योग्य नहीं है, निंदनीय नहीं है, लेकिन वो जो बात है जिसको अपन ने गलत समझ लिया है, जब तक जिनवाणी अपन नहीं देख लेते तब तक के अपन मिथ्या दृष्टि नहीं होएंगे, लेकिन जिनवाणी देखने के बाद भी अगर उस बात की जिद पकड़े रहें और जिनवाणी की बात को अस्वीकार कर दें तो मिथ्यात्व का दोष आ जाता है उसी क्षण। तो जयसेन स्वामी कह रहे हैं ये शुद्धोपयोग वगैरह की बात है, तो इसमें अपनी चर्चा ऐसी थी कि अभेद रत्नत्रयात्मक। और रत्नत्रय के बारे में भी देखो आगम में कहां कहां कैसा उल्लेख है। राजवार्तिक में कहते हैं कि दो रत्न तो कर्म भूमि में होते हैं, तीसरा रत्न भी कर्म भूमि में होता है, लेकिन भोग भूमि और देव नरक गतियों में दो ही रत्न होते हैं, तीसरा रत्न नहीं होता। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? यदि ऐसा माना जाए कि सम्यक दर्शन जहां जहां है वहां वहां रत्नत्रय भी है, वहां वहां चारित्र भी है, तो फिर कितने रत्न होंगे? तीन। और आचार्य कह रहे हैं कि तीन रत्न सिर्फ कर्म भूमि में होते हैं, तो क्या आचार्य ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि सिर्फ कर्म भूमि में होते हैं? क्योंकि मान्यता तो ये कह रही है, जिन लोगों की ऐसी मान्यता है उनकी मान्यता क्या कहती है कि जितने सम्यक दृष्टि उन सब के पास रत्नत्रय। तो कैसी बात, परिणाम क्या निकला इसका कि अगर सारे सम्यक दृष्टि के पास, दृष्टियों के पास रत्नत्रय हो, तो फिर ये वचन कि कर्म भूमि में ही रत्नत्रय होता है, ये वचन मिथ्या हो गया। तो आगम मिथ्या हो गया और आप सही हो गए, ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इससे क्या अर्थ निकालना पड़ेगा? अर्थ ये निकलेगा कि तीसरा जो चारित्र रत्न है वो न तो भोग भूमियों में है, न देवों में है और न नरकों में है। आगे ये अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह का स्थान नहीं रह गया। तो अब ये बात सिद्ध हो गई कि चारित्र कोई ऐसी वस्तु है जो सम्यक के साथ हमेशा नहीं पाई जाती। आ गया समझ में? कर्म भूमि का मनुष्य पुरुषार्थ करके ही चारित्र को प्राप्त कर सकता है, वो सहज रूप से सम्यक के साथ बख्शिश में मिलने वाली वस्तु नहीं है, पुरुषार्थ से साध्य है चारित्र। इसीलिए कर्म भूमि के मनुष्य को ही प्राप्त होता है चारित्र। और इसी प्रकार आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि अवधिक ज्ञानियों को जब नमस्कार किया जाता है तो फिर अवधिक ज्ञानी मुनियों को ही क्यों नमस्कार करते हो? अवधिक ज्ञानी तो देव भी हैं, और देव भी सम्यक दृष्टि देव हैं जो अवधिक ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टियों के पास अवधिक ज्ञान तो होता नहीं, विभंग ज्ञान होता है, तो उनको क्यों नहीं नमस्कार किया? तब उसका जवाब क्या दिया? बोले कि तीन रत्न के जो धारक हैं उन अवधिक ज्ञानियों को हम नमस्कार करते हैं, दो रत्नों के धारी हैं उनके दो रत्न तो आदर के योग्य हैं, लेकिन वो चारित्र में छोटे हैं, कषाय में बड़े हैं, इसलिए उनको नमस्कार इस रूप में नहीं करेंगे। आया समझ में? नमो ओहि जिनाणम। तो अवधि जिन के अंतर्गत वे सारे मुनिराज आ जाते हैं जिनको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन देवता नहीं आते, क्योंकि देवता अवधि ज्ञानी तो हैं लेकिन ओहि जिन जिन नहीं है। वो जिन दो प्रकार के हैं, सकल जिन और देश जिन। सकल जिन तो केवल ज्ञानी भगवान है और देश जिन मुनिराज हैं। और फिर कहीं किसी विवक्षा से देखो तो फिर दूसरे गुणस्थान वाला जीव भी जिन है, क्योंकि 16 कर्मों के बंध का उसने सफाया कर दिया, उसने जीत लिया है 16 कर्मों के बंध। मिथ्यात्व को जिसने जीता है वो भी एक देश जिन कहा है उसको उपचार से। पर आगे के गुणस्थानों में विशेष रूप से जहां पर नमो जिनाणम सूत्र आया है वहां पर उन्होंने देश जिन और सकल जिन ऐसे दो भेद करके मुनियों को उसमें गर्भित किया है, उनको नमस्कार किया है। जो गणधर महाराज मुनि पद से निचले पद वालों को कैसे नमस्कार करें? कर सकते हैं क्या? आप अपने बेटे के चरण छू सकते हैं क्या? बेटा आपके चरण छू सकता है लेकिन आप अपने बेटे के चरण नहीं छू सकते, और बेटा मुनि हो जाए तो छू सकते हैं, क्योंकि वो गरिमा बढ़ गई ना, इसलिए फिर आराध्य हो गए, तो ऐसा हो जाता है। अब इसमें कहते हैं अत्र प्रावृत शास्त्र, इस प्रवचन प्रावृत शास्त्र में तान्येव गुणस्थानानि संक्षेपेण शुभा शुभ शुद्ध उपयोग रूपेण कथितानि। इस ग्रंथ में वे ही गुणस्थान जो तीन भावों में बटे हुए हैं अशुभ शुभ शुद्ध, इनको उपयोग रूप से यहाँ पर बतलाया गया है। कथम इति चेत, वो किस प्रकार, तो बोलते हैं मिथ्यात्व सासादन मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्येन अशुभ उपयोग। पहले तीन गुणस्थानों मिथ्यात्व सासादन और मिश्र, इन गुणस्थानों में तारतम्य से, तारतम्य का अर्थ होता है न्यूनाधिकता को लिए हुए अशुभ उपयोग, अशुभ भाव बन जाता है तीन निचले गुणस्थानों। तदनंतरम असंयत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रये, ये शुरू के तीन गुणस्थानों में अशुभ भाव बनता है न्यूनाधिकता को लेकर, और उसके आगे के तीन गुणस्थानों में चौथे पांचवे और छठे गुणस्थानों में तारतम्येन शुभोपयोग, न्यूनाधिकता को लिए हुए शुभोपयोग यानी शुभ भाव हो सकता है, होता है। और तदनंतरम उसके आगे अप्रमत्तादि क्षीण कषायांत गुणस्थान षट के आगे के छह गुणस्थानों में सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा और बारहवा, ऐसे आगे के छह गुणस्थानों में तारतम्येन शुद्धोपयोग, न्यूनाधिकता को लिए हुए शुद्धोपयोग पाया जाता है। तदनंतर उसके आगे फिर कौन सा उपयोग होगा बारहवें गुणस्थान के ऊपर, तो आचार्य कहते हैं संयोग योगी जिन गुणस्थान द्वय, संयोग केवली और अयोग केवली ऐसे दो गुणस्थान आखिरी में तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग फलम इति भावार्थ, शुद्धोपयोग का फल होता है। आगे समझना, पहले तीन गुणस्थानों में अशुभोपयोग, फिर उसके आगे वाले तीन गुणस्थानों में शुभोपयोग, और फिर आगे के छह गुणस्थानों में शुद्धोपयोग। बिल्कुल इतना क्लियर हिसाब है। अब यहां पर विचार करने की बात है कि जिस आत्मानुभव को लोग शुद्धोपयोग मानकर चतुर्थ गुणस्थान में स्वीकार कर रहे हैं वो बात थोड़ी विचारणीय है, और उसके बारे में जिसकी इच्छा हो विशेष रूप से चर्चा करने की वो चर्चा कर सकते हैं, अथवा उसके ऊपर अपन विशेष रूप से, संजीव ब्रह्मचारी जी का कहना था कि कुछ ऐसे व्याख्यान रख लिए जाए उसके ऊपर, कुछ ऐसे विशेष विषय हैं जिनको लेकर के दो दो तीन तीन दिन के उसके ऊपर से विवेचना व्याख्यान रखे जाए, जिनकी रुचि हो वो आकर के सुनकर समझ ले, अथवा उसकी रिकॉर्डिंग्स हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग्स, जिनको सुनने की इच्छा हो यहाँ आने से जिनको परहेज हो तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हम कोई कड़वे भाव से नहीं बोल रहे हैं, एक सहज रूप से बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कुछ वर्तमान में, पर कोई बात नहीं, उनके प्रति भी अपने को कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई ऐसा अपने को कोई तकलीफ नहीं है उस बात से, लेकिन क्या करें, जैसा हो गई लकीर जैसी बन गई तो अब उस लाइन में लोग चल रहे हैं। पर फिर भी अगर खुला दिमाग रखें, सिर्फ इतना ही अपना संदेश है उनके लिए कि आप लकीर के फकीर न बनो, कुछ अपनी बुद्धि भी लगाओ। हम तो यहाँ तक के कहते हैं कि हम भी जो कुछ बता रहे हैं उसको आप आँख बंद करके मत करो स्वीकार, आँख बंद करके अगर हमारी बात भी स्वीकार करोगे और हम मान लो कोई बात गलत कह जाएं भूल से, कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम आगम से विरुद्ध कुछ भी न सुनाए आपको, और हमारा आपसे एक आग्रह भी है कि अगर हमारी बातों में भी कोई बात आगम से विपरीत हो तो आप उसको बिल्कुल बेधड़क फेंक देना उठा करके, वो जिनवाणी नहीं है, जो आगम से विरुद्ध बात है उसको हम जिनवाणी नहीं मानते, अगर हम भी कह रहे हो तो वो भी जिनवाणी नहीं हो, उसको फेंक देना, बिल्कुल पास में ही समुद्र है, फेंक देना वहां। तो अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि, खुद अपनी बुद्धि भी लगाएं अपन, ऐसा नहीं आंख बंद करके किसी ने कोई बात कह दी उसको बिल्कुल स्वीकार कर लो, थोड़ा आंख खोल के रखो, अपने पास मनुष्य पर्याय में विवेक है, हर जगह नहीं होता ये, घोड़ा दिन भर मनुष्य जीवन भर मनुष्य की सेवा करता है, उसकी शक्ति मनुष्य से ज्यादा है कि कम है? हॉर्स पावर ज्यादा है या मैन पावर ज्यादा है? हॉर्स पावर ज्यादा है, लेकिन फिर भी मनुष्य की सेवा क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य दिमाग से काम लेता है। तो जब मनुष्य घोड़े को हांकने के लिए दिमाग से काम लेता है तो फिर खुद क्यों घोड़ा बन जाता है? खुद क्यों किसी के वचनों द्वारा हांका जाता है? खुद क्यों दूसरों की बातों में फंस जाता है? उसको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए और अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए कि कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। अपने को किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है। जैन दर्शन किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चल सकता। इसीलिए हमें उस बात का विरोध है जो लोग कहते हैं कि विद्यासागर महाराज ही सही है, बाकी सारे महाराज झूठे हैं। इस बात के हम विरोधी, हम भले विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं लेकिन हम इस बात को गले नहीं उतार सकते अपने कि सिर्फ विद्यासागर महाराज ही सही है और फिर बाकी सारे महाराज झूठे हैं। कैसा हो सकता है? अपन कैसे जाने कि झूठे हैं सच्चे हैं, कौन क्या है? अपने को खुद नहीं पता कि अपन सच्चे हैं कि झूठे हैं, फिर दूसरों का कहां से गणित लगाओगे? सब जगह अच्छाई भी होती है, सब जगह बुराई भी होती है। ये ठीक है, कहीं किसी जगह बुराई कम होती है, किसी जगह अच्छाई कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन दीवार खड़ी कर लें, क्योंकि दीवार खड़ी करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। अब जैसे हमने कई उदाहरण भी दिए थे आपको, कई ऐसे साधु अपने संघ में भी आते हैं कई बार, दूसरे संघ के साधु, और फिर आचार्य श्री उनसे मिलते भी हैं, कभी नहीं भी मिलते, दोनों प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो फिर उसके आधार पर श्रावक को अपना दिमाग कलुषित नहीं करना चाहिए, श्रावक को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। साधु साधु में आपस में कैसा बर्ताव है इसको आप उनके जिम्मे छोड़ो, उनका डिपार्टमेंट अलग है। आप अपने डिपार्टमेंट में अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। साधुओं के बीच में जो मतभेद है वो तो क्या है कि भद्रबाहु महाराज ने चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में से एक स्वप्न देखा चंद्रगुप्त ने, कि रत्नों की राशि के ऊपर धूल है। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने उसका फल बताया कि इस पंचम काल में साधुओं में मतभेद होगा और कभी विवाद की स्थिति भी होगी, लेकिन साधुओं के मतभेद को लेकर श्रावकों को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। श्रावक का कर्तव्य क्या है? दान और पूजा। अब श्रावक अगर दान और पूजा छोड़ देगा तो क्या साधु होटल जाएंगे? साधु ने जो त्याग किया है सो त्याग तो उनका त्याग है ही, वो कहाँ क्या करेंगे बताइए? आप अपने अलग नए कायदे बना लो तो फिर साधु धर्म कैसे प्रवर्तित होगा पंचम काल में? जिनेंद्र वर्णी जी का एक पत्र है, बड़ा सुंदर पत्र है। हम तो क्या है कि जो हम बोलते हैं, कभी किसी विवक्षा से कोई बात कहते हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर कषाय भाव नहीं है ऐसा हमें लगता है। हो सकता है हमारी त्रुटि भी हो ऐसा समझने में, कभी कदाचित हमें कषाय आती भी है, लेकिन बैर भाव हमारा किसी के प्रति नहीं, इतना तो हमें ऐसा अंदर से विश्वास है। और निष्पक्षता जरूर हमारे अंदर रहती है कि कभी कोई बात अगर अपने साथी भी गलत बोलते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये तो गलत है और फिर हम उसको टोक दें। हमारे पैर दबाने वाला भी अगर कोई गलती करता है तो फिर हम उससे बोलेंगे कि ये गलती है। ऐसा नहीं कि प्रशंसक की गलत बात का भी हम समर्थन करें और निंदक की सही बात का भी हम निषेध करें, नहीं। निंदक की भी अगर कोई बात सच है तो वो सच बात ग्राह्य है, तभी तो अपन सज्जन है। नहीं तो वो पार्टी वाली बात जो होती है वो धर्म में रोड़ा बन करके अपना अहित करने वाली होती है। अभी जो चर्चा चल रही थी उपयोग के बारे में, आश्रव की चर्चा आई, आश्रव में ये था कि मन वचन काय के शुभ और अशुभ भाव पुण्य और पाप का कारण बन जाते हैं। अब शुभ भाव कौन से हैं, अशुभ भाव कौन से हैं और शुद्ध भाव कौन से हैं, कहाँ कौन सा भाव पाया जाता है, इनकी चर्चा चल रही थी। प्रवचन सार ग्रंथ में इन्होंने, जयसेन स्वामी ने पूरे गुणस्थान दे दिए। लेकिन अगर इसको भी आप शब्दशः सिद्धांत मानकर पकड़ कर बैठ जाओ तो फिर आगे चल करके प्रवचन सार ग्रंथ में ही अंत अंत में कुछ गाथाएं ऐसी आई है कि दान देने का फल पात्र के भेद से बदल जाता है, क्योंकि तीर्थंकर को दान देते समय भाव में अंतर होता है, सामान्य मुनि को दान देते समय भाव तीर्थंकर को देते समय जो होंगे वैसे भाव नहीं बन सकते, और क्षुल्लक एलक आर्यिका को आहार दान देते समय कुछ मुनि को देते समय जो भाव होते हैं वैसे भाव नहीं बन सकते, और फिर अपने किसी सहधर्मी भाई को प्रतिमाधारी को आहार कराते समय वैसे भाव नहीं बनते जैसे भाव गुरु को आहार कराते समय बनते हैं, और कोई अव्रती लेकिन धार्मिक श्रद्धा वाला कोई मनुष्य है उसको भी अपन भोजन कराते हैं, बड़े प्रेम से कराते हैं, बड़े आदर के साथ आहार कराते हैं, लेकिन उसके प्रति वो भाव नहीं बन सकते जो गुरुजनों के प्रति बनते हैं, व्रति के प्रति बनते हैं। तो इसलिए आहार दान के फल भी पात्र के भेद से बदल जाते हैं। उस प्रकरण में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि फल भी भिन्न होता है, क्योंकि पात्र भिन्न है, देने वाले के भाव में अंतर आया है, भाव में अंतर आने के कारण उस भाव के फल में भी अंतर पड़ेगा। और वहां पर आचार्य जयसेन स्वामी ने एक पंक्ति लिखी है कि यदि शुभोपयोग सम्यक तो पूर्वक होता है तब वो पुण्य प्राप्ति के साथ परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। ये पंक्ति आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी है इसी प्रवचन सार ग्रंथ में, नो चेत, और अगर शुभोपयोग सम्यक के साथ नहीं है तो पुण्य बंध मात्र में उसका फल क्या होगा, सिर्फ पुण्य का बंध होगा, लेकिन क्रमशः मोक्ष तक ले जाने वाला वह शुभ भाव नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि तीन गुणस्थानों में अशुभ भाव है, वो किसी दृष्टि से कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अगर सम्यक्त से रहित कोई जीव है वो शुभ भाव करे तो उसको पुण्य का बंध होगा, उसको क्रम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्या मतलब हुआ कि सम्यक्त से रहित जीव भी शुभ भाव कर सकता है, आया कि नहीं? और यहां जो कथन है इसको पढ़ करके क्या अर्थ निकल रहा है कि पहले तीन गुणस्थानों में अशुभ भाव होता है, अब बताइए क्या करोगे? दो कथन एक ही आचार्य के, अब यहां बीच में फिर दूसरे अध्याय में तीसरा कथन और मिलेगा आपको। तीनों उपयोग का जो स्वरूप बताया आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, वहां आप देखोगे तो दिमाग और चकराएगा कि अरे ये तो क्या कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ और नहीं कह रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं अपन। बस इतना भर अपन ख्याल रखें कि अपनी समझ में कुछ फेर है, शास्त्र की बातों में कोई फेर नहीं है, तो कल्याण हो जाए। इस प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की वो जो टीका है उसका अर्थ आज सैकड़ों लोग यही ग्रहण करते हैं कि शुभोपयोग क्षयोपशमिक भाव है। सैकड़ों लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े त्यागी व्रति और उनके अनुयायी, लेकिन उसी गाथा के आगे पीछे की गाथा की टीका और देख लें तो फिर सब स्पष्ट हो जाता है। ज्यादा कहीं कुछ तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, वहीं देखो आप। अब जैसे हमने पिछले साल बताया ना कि एक विद्वान ने सुधा सागर महाराज जी से 20 मिनट तक बहस की कि ठोने में स्थापना नहीं करना चाहिए, बोले चावल में। 20 मिनट तक बहस चलती रही, हम बार बार बीच में निवेदन करना चाहते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। अंत में फिर उनका ध्यान गया कि भाई क्षुल्लक जी कुछ बता रहे हैं, चलो भाई क्या बता रहे हैं। तो हमने बोला कि ये जो एक पेज पलट करके पीछे जो श्लोक है उसका अर्थ पढ़ लो क्या लिखा है। तो फिर वो भी थक गए थे थोड़ा बहस करते करते, उनको लगा कि चलो भाई देख लो, ऐसे पेज पलटा उनने। और पेज पलट कर जैसे ही उन्होंने वो श्लोक पढ़ा तो उनने ऐसे हाथ जोड़कर आंख बंद कर ली और बोले कि आज के बाद कभी विरोध नहीं करूंगा। देखो समाधान बहुत करीब है, लेकिन अपनी एक बुरी आदत है, अपन पास की चीज को दूर ढूंढते हैं, इसलिए समाधान नहीं मिलता। तो वो जो उपयोग वाला विवाद है, अब एक वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि चौथे गुणस्थान में शुद्ध उपयोग है। देखो आत्मानुभव और शुद्ध उपयोग, इन दो शब्दों में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। ये चौथे गुणस्थान में आत्मानुभव और शुद्धोपयोग मानने वाले भी शुद्धोपयोग और आत्मानुभव को एकार्थवाची मानते हैं, और सातवें गुणस्थान में आत्मानुभव और शुद्धोपयोग मानने वाले भी आत्मानुभव और शुद्धोपयोग को एकार्थवाची मानते हैं। हकीकत कुछ और ही है, हम अपने मन से नहीं कहना चाह रहे, शास्त्रों में जो बात आई है वो कुछ और ही है। कभी अगर ऐसा आयोजन हो जाए कि 3 दिन तक आत्मानुभव के बारे में कोई व्याख्यान रख लिया जाए तो फिर उसके ऊपर हम बड़े विस्तार के साथ, पर दिक्कत यह है कि आप लोग इतने घबरा जाते हैं इन बातों को सुन करके, इन शब्दों को सुन करके, कि फिर हमें डर लगता है कि भाई आपको डर न लगे। भाई किसी को डराना भी तो पाप का कारण हो सकता है ना, तो हम किसी को डराना नहीं चाहते, कैसे करें बताओ। या तो फिर एक उपाय ये हो सकता है कि अपने कमरे में हम 3 घंटे तक के व्याख्या दे दे, एक आध समझदार आदमी बैठ जाए सामने और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर वो रिकॉर्डिंग सब लोग सुन ले। अभी बिहार में हम गर्मियों में चल रहे थे तो अच्छा गर्म मौसम था, तो भी हमारे सामने कुछ बहुत दूर से, मतलब लगभग 1,000-1,500 किलोमीटर दूर से कोई आया और इस विषय में उसने कुछ हमारे पास में बात रखी। कोई किसी पिच्छीधारी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात रखी हमारे सामने आत्मानुभव वगैरह के बारे में, तो फिर हमने उनको फिर 1.5 घंटे तक, आहार के पहले की बात है, पूरा गला सूख जाने तक हमने उनको लेक्चर दिया और उन्होंने कैसेट लेकर के उसको रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्डिंग जब उनको वहाँ सुनाई उन्होंने तो फिर उनको बहुत सुकून मिला। और हमें विश्वास है कि आगम की इस वाणी को अगर कोई भी सुन ले, क्योंकि पक्षपात से कोई सार नहीं निकलने वाला। अब साधुओं का पक्ष रख करके आप व्यवहार आओ लंबी बन करके आत्मानुभव और शुद्धोपयोग के बारे में एक भ्रांति बना लो तो उसमें भी कोई सार नहीं कटता, और फिर यहाँ पर अगर आप निश्चय का आलंबन लेकर के फिर चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग और आत्मानुभव का एक विशेष प्रकार का आग्रह बना लो तो उसमें भी कोई सार नहीं निकलता। हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हम पूरे हिंदुस्तान के दिग्गज विद्वानों से भी हम चाहते हैं कि इसका आपके पास क्या उत्तर है, क्या आप हमारे प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं आगम से। हमारा विश्वास है कि अच्छे खासे उच्च कोटि के जो प्रथम श्रेणी के विद्वान हैं उनको भी पसीना आ जाएगा उन प्रश्नों को सुन करके। कोई जवाब किसी के पास मिलना मुश्किल है, जवाब सिर्फ जिनवाणी के पास है, लेकिन वो अगर कोई ऐसी कोई योजना हो जाती है तो फिर बहुत आनंद आ जाए। हो सकता है उसमें पूरी 1 CD लग जाए आपकी। 1 CD यानी कितने मिनट्स की होती है, 70-80 मिनट की, कितने मिनट्स की होती है, जितने भी हो उतना टाइम भी लग सकता है। मतलब आपको हम 10 शास्त्रों के प्रमाण के साथ पूरा व्याख्यान सुना दें लेकिन उससे कई लोगों का उद्धार हो सकता है, माने वो भ्रांति अगर दूर हो जाए, क्योंकि आत्मानुभव शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर कई प्रकार से है, अपन एक अर्थ की खींचातानी करते हैं तो भटकते हैं। शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग के बारे में बहुत विस्तार है, इसको भी समझना जरूरी है, और समझ जाए तो फिर कोई विवाद नहीं। नहीं समझते इसलिए झगड़ा करते हैं, खींचातानी करते हैं, झगड़े में आनंद आता है इसलिए समझना भी नहीं चाहते, ये भी एक समस्या है। व्यक्ति समझना क्यों नहीं चाहता, क्या कारण है? क्योंकि मैंने कुछ जो समझा है और सामने वाले ने जो समझा, इन दोनों में अंतर है, और अगर मैं पूरा समझ लूंगा और वो भी पूरा समझ लेगा तो फिर अपना जो चल रहा है अभी गेम, वो गेम खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कैसे मजा आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग कषाय का रस पी रहे हैं, कोई आत्मा का स्वाद नहीं ले रहा है और न लेना चाह रहा है, क्या करें बताओ। आत्मा का कल्याण हो तो कैसे हो, इसलिए आत्मा के कल्याण की जिनको भावना है उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। और यही पंक्तियां आचार्य जयसेन स्वामी ने, 2 अध्याय की एक गाथा आती है,